नमस्कार भारत, 11 नवंबर सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिवसेना को दिया सरकार बनाने का न्योता, ठाकरे परिवार के आवास मातोश्री में रात भर रही हलचल।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा।
छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य को लेकर राज्य और केंद्र सरकारें आमने सामने।
पूर्वा से सर्वाधिक कोयला प्रोडक्शन होता है और हम कोयला का डिस्पैच रोक देंगे अगर ये चावल को नहीं लेंगे तो।
जानेंगे झारखंड के विधानसभा चुनावों में कितनी अहमियत रखता है भूख से हुई मौतों का मुद्दा।
झारखंड को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए किस तरह के मुद्दे को भूख से जोड़ा गया
है, ये फैक्ट है। भले सरकार उसको नजरअंदाज करे कि नहीं बीमारी से मरा,
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। सरकार बनाने से बीजेपी के इनकार के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिवसेना को न्योता भेजा है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हालांकि राज्य में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार थी, लेकिन इस बार शिवसेना सत्ता में हिस्सेदारी के 50-50 फॉर्मूले पर अड़ गई है, जिससे राजनीतिक गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है। बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने आम चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेनाध्यक्ष ने भी कहा था कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनावी नतीजों को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ने शंका जताई थी। पहले चरण में मोरालेस को जरूरी ठीक 10% मतों की बढ़त मिली थी। टेलीविजन प्रसारण में मोरालेस ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने कहा है कि राष्ट्रपति को नजरअंदाज करने के लिए ट्रंप प्रशासन के ही 2 वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की थी। अपनी नई किताब में निकी हेली ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली और पूर्व विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने ट्रंप के कुछ फैसलों का विरोध करने की अपील की थी।
Instead of saying that to me, they should have been saying that to the president, not asking me to join them on their sidebar.
मुझसे कहने की बजाय उन्हें राष्ट्रपति से ये बात कहनी चाहिए थी। अपनी योजना में मुझे शामिल करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि आप राष्ट्रपति के पास अपने मतभेदों को लेकर जाते और वो जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो पद छोड़ देते। लेकिन राष्ट्रपति को नज़रअंदाज करना ये बहुत खतरनाक चीज़ है और ये संविधान के खिलाफ है। ये थे निकी हेली के शब्द। ईरान ने कहा है कि उसे 50 अरब बैरल के तेल भंडार वाले नए इलाके का पता चला है, जिससे उसका तेल भंडार 1/3 इजाफा हो जाएगा। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि भंडार खुजिस्तान प्रांत में पाया गया। ईरानी राष्ट्र के दुश्मनों के बावजूद उन दिनों में जब आप ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं और हमारे देश पर दबाव बनाते हैं, हमारे वर्करों और इंजीनियरों ने 53 अरब बैरल का विशाल तेल भंडार खोज निकाला है। ये थे ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के आम चुनाव में लगभग सभी वोटों की गिनती के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। मौजूदा प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। दूसरे स्थान पर पीपुल्स पार्टी है, जबकि कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी वोक्स अपने वोटों में इजाफा करते हुए तीसरे नंबर पर रही। अमरीकी सेना के एक शीर्ष कमांडर ने कहा है कि सीरिया में करीब 500 अमरीकी सैनिक रहेंगे। जनरल मार्क मिले ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप के फिर से उभार को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस बीच तुर्की के नियंत्रण वाले उत्तरी सीरिया में हुए एक बम धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। सीमा पर स्थित तल आबियाद कस्बे में कार बम धमाका हुआ था। जॉर्डन की सीमा के पास 2 इलाकों में इसराइल की पहुँच को लेकर 25 साल समझौते को जॉर्डन ने ख़त्म कर दिया है। इसराइल ने इस पर अफसोस जाहिर किया है। इसराइलियों को इन इलाकों में खेती करने की इजाज़त थी। इस समझौते को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने इस समझौते को ख़त्म करने की घोषणा कर दी। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। सोशल डेमोक्रेट नेता वियोरी डेंसिला और निवर्तमान राष्ट्रपति क्लाउस लोहानिस के बीच अगले 2 हफ्तों के अंदर मुकाबला होना है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में लगी आग के बाद अधिकारियों ने आपात स्थिति की घोषणा की। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर सरकार बनाने को जारी गतिरोध के बीच सारा ध्यान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर केंद्रित हो गया है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना से पूछा है कि क्या आप सरकार बनाने की इच्छा और योग्यता रखते हैं, यानी सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। इसके बाद से ही शिवसेना के नेताओं का मातोश्री में जमावड़ा शुरू हो गया और रात भर उनका आना जाना लगा रहा। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से मिले और कहा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। राजभवन के बाहर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत ने बताया कि शिवसेना ने महाराष्ट्र की जनता की ओर से मिले जनादेश का निरादर किया है।
माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भारतीय जनता पार्टी को नया सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, लेकिन जनादेश होने के बावजूद भी उसका अनादर करते हुए शिवसेना ने साथ में सरकार बनाने के लिए अनिच्छा व्यक्त की। इच्छा नहीं ऐसा कहा, इसलिए अब हम सरकार नहीं बनाएंगे। यह माननीय राज्यपाल जी को कन्वे करने के लिए यहाँ हम आए थे। यह जनादेश साथ में मिलकर काम करने का था। उस जनादेश का अपमान करके शिवसेना को यदि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनानी है तो उनको हमें हमारी खूब खूब शुभेच्छाएं।
ये थे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली। दोनों मिलकर सरकार बना सकती हैं, मगर बात अड़ गई है सीएम पद को लेकर। शिवसेना ने फिर दोहराया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेगा तो सिर्फ शिवसेना का। कल पार्टी के सांसद संजय राउत से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या राज्यपाल की ओर से जो शिवसेना को न्योता मिला है, क्या शिवसेना उसको स्वीकार करेगी, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए।
देखो, मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। आज ही दोपहर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। मैं कहता हूं, अगर उद्धव जी ने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा।
ये थे शिवसेना नेता संजय राउत, जो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि सीएम शिवसेना का बनेगा तो बनेगा। मगर पत्रकारों ने जब उनसे ये पूछा कि आप सरकार बीजेपी के साथ बनाओगे या कांग्रेस एनसीपी के साथ, तो वो कुछ नहीं बोले और वहां से चल दिए। रात भर महाराष्ट्र में क्या हलचल रही और अब पूरा मामला किस ओर बढ़ता दिख रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मुंबई, जहां से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। मयूरेश, अब तक क्या जानकारी है, रात भर क्या हुआ?
जैसे देर शाम को शिवसेना को राज्यपाल ने न्योता दिया कि क्या आप सरकार स्थापन कर सकते हैं, तब से ही महाराष्ट्र में जो गतिविधियां है वो बढ़ गई और पूरा अभी पॉलिटिकल सेंटर जो है वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है उनका जो रेसिडेंस है मातोश्री वो अब बन चुका है। दिन रात भर वहां पे शिवसेनाओं के नेताओं का आना जाना रहा। हालांकि शिवसेना के सारे एमएलए एक रिसोर्ट पर रखे गए हैं, लेकिन वहीं पे ही सभी एक्टिविटीज थी। आज शाम 7:30 बजे तक गवर्नर ने शिवसेना को डेडलाइन दी है कि उनको बताना है क्या वो सरकार स्थापन करने के लिए उत्सुक है या ना है। तो शायद शिवसेना ने अपना मन बना लिया है और इसलिए दो चीजें अब अहम है आज पूरे दिन भर में। एक कि क्या शिवसेना 7:30 बजे तक गवर्नर को जाकर मिलकर कहेगी कि हाँ वो सरकार बनाएंगे, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे ही शिवसेना को न्योता मिला, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी ने पहली बार खुलकर ये कहा है कि वो शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसका विचार वो करेंगे, लेकिन शिवसेना को सबसे पहले एनडीए से बाहर आना पड़ेगा, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी अहम बात आज ये है कि क्या शिवसेना एनडीए से बाहर निकलती है, और अगर वो करती है तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार में फिलहाल उनके एक मंत्री है अरविंद सावंत, क्या वो इस्तीफा आज देंगे। तो ये अहम बातें कुछ घंटों के अंदर उद्धव ठाकरे को डिसाइड करनी है और इस पर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति अब देख रही है, सबकी निगाहें उस तरफ है।
जी, तो ये कांग्रेस का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उसकी अहम सहयोगी है एनसीपी, जब एनसीपी ने ये कह दिया कि वो विचार कर सकती है।
जी अब बातें अड़ेंगी तो कांग्रेस की यहाँ पे ही अड़े हुई हैं, जयपुर में सारे उसके एमएलएज हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था कि वो अभी भी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उनको और एनसीपी को विरोधी पक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि कांग्रेस की एमएलएज की जयपुर में फिर से एक बैठक होगी और शायद उसके बाद सोनिया गांधी से फिर से मुलाकात करने के लिए कुछ नेता जा सकते हैं। कांग्रेस में एक गुट ये है कि वो स्ट्रांगली डिमांड कर रहा है कि हम शिवसेना के साथ जाएं, या तो सरकार में रहे या फिर बाहर से उन्हें सपोर्ट करें लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर रखे। तो अगर ऐसा ये होता है तो क्या सोनिया गांधी, जिनको कहा ये जा रहा है कि वो शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए उसके पक्ष में ज्यादा नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगे या फिर कांग्रेस में दो गुट दिखाई देंगे?
जी, तो यानी अब पूरा मामला जो है वो आज दिन भर के घटनाक्रम पर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश। और अब महाराष्ट्र के बाद रुख करते हैं झारखंड का, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार भूख से हुई मौतों के कारण विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव प्रचार का हिस्सा बना रही हैं। ऐसे में इन आरोपों से कैसे निपट रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और क्या इस मुद्दे को इस बार चुनावों में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में भी जगह मिलेगी? क्या इतना अहमियत रखता है उनके लिए ये? इसी पर सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
कहते कहते भूख से मर गई संतोषी, ओ पगले तू क्या जाने।
यह गीत किसने लिखा और गाया इसका ठीक ठाक पता नहीं, लेकिन संतोषी की मौत के दो साल बाद भी इस गीत की पंक्तियां सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर कोयली देवी आज भी फूस की उसी झोपड़ी में रह रही हैं जहां सितंबर 2017 में उनकी 11 साल की बेटी संतोषी की मौत हुई थी। तब उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला था। संतोषी भात खाना चाहती थी लेकिन घर में चावल का एक भी दाना नहीं था। थोड़ी चाय पत्ती थी, थोड़ा नमक और पानी। बेटी के पेट में कुछ तो जाए यह सोचकर कोयली देवी ने पानी में नमक और चाय पत्ती डालकर चाय बनाई। संतोषी वह चाय नहीं पी सकी। जब मरी तो उसके मुंह में भात भात के उच्चारण थे। यह उस मौत का सर्टिफिकेट था जो दरअसल खाना नहीं खाने के कारण हुई थी। कोयली देवी वह दिन नहीं भूलती।
मोर बेटी कोनो नहीं हाथ रहे, जमाए से जमाए चाउर ना दाल कुछ नहीं रहे, भूखे में मोर बेटी कर रहे देओ भात कहां से आन के तो खिया मुंह में कहला।
झारखंड में कथित तौर पर भूख से होने वाली वह पहली मौत थी जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रही। इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मामला सड़क से विधानसभा होते हुए संसद तक पहुंचा। तब दावा किया गया कि राज्य में किसी की मौत भूख से नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चर्चित सोशल एक्टिविस्ट रितिका खेरा के नेतृत्व में बनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दावा किया कि पिछले 5 साल के दौरान झारखंड में कम से कम 22 लोगों की भूख से मौत हुई है। इस टीम में शामिल रहे सिराज दत्ता ने बीबीसी से कहा कि कुपोषण और भुखमरी आज भी झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है।
अगर राजनीतिक दलों का देखे विपक्ष का, तो मुख्यतः हादसा होने के बाद ही एक्शन दिखता है, मतलब की जाके वहाँ परिवार से मिल ली है, स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन एक सस्टेन एक्शन तो इस पे नहीं दिखा है।
पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कहते हैं कि रघुवर दास की सरकार भुखमरी पर काबू पाने की जगह इसे चूट लाने में लगी रही। यह हमारे लिए बड़ा मुद्दा है और अगर हम सत्ता में आए तो कोई भूख से मरे इसकी नौबत नहीं आने देंगे।
लोग भूख से मरते थे, ये फैक्ट है। भले सरकार उसको नजरअंदाज करे कि नहीं बीमारी से मरा या ये से मरा वो से मरा, हमने तो ये भी देखा कि भूख से मरे उनके घर पे राशन कार्ड है। जब ये प्रशासन को पता चला तो मिडनाइट में दरवाजे में अनाज फेंक करके भाग गए।
वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगाता रहा है।
झारखंड में जितने भी इस तरह के मुद्दे आए वो एक्चुअली भूख क्या मुद्दा ही नहीं था। विपक्ष ने जबरदस्ती झारखंड को बदनाम करने के लिए ऐसे मुद्दे को, जो स्वाभाविक मौत भी हुई बीमारी से भी मौत हुई, तो झारखंड को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के मुद्दे को भूख से जोड़ा गया।
इधर राइट टू फूड कैंपेन से जुड़े लोगों का कहना है कि झारखंड में करीब 15% योग्य लोग आज भी राशन से वंचित हैं। सरकार अभी तक साल 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा का ही इस्तेमाल कर रही है, जबकि पड़ोसी राज्यों की सरकारें अपने खर्च पर इसे अपडेट करा चुकी हैं। ऐसे में यहां भूख से मौत की और घटनाएं नहीं होंगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। बहरहाल मौजूदा विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। इसके बावजूद करीब करीब सभी दलों के नेता भूख से मौत को अपने प्रचार का हिस्सा बना रहे हैं। भाजपा नेताओं को इसका जवाब तलाशने में दिक्कतें हो सकती हैं। रवि प्रकाश, BBC रांची।
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के समर्थन मूल्य को लेकर राज्य और केंद्र सरकारें आमने सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदना चाहती है, मगर केंद्र सरकार ने चेताया है कि अगर ऐसा किया तो वो छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदेगी। अब छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि अगर चावल नहीं खरीदा तो हम केंद्र की आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। क्या है ये मामला, सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में पिछले साल सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की थी। देश में किसानों को धान की सर्वाधिक कीमत दिए जाने का स्वागत भी हुआ, लेकिन इस साल जब राज्य सरकार ने इसी कीमत पर लगभग 20 लाख किसानों से 85 लाख टन धान खरीदने की तैयारी शुरू की तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि उसके द्वारा घोषित धान के समर्थन मूल्य 1,815 रुपए से अधिक कीमत पर अगर राज्य सरकार ने धान खरीदा तो वह अपनी जरूरतों के लिए छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदेगी। केंद्र सरकार राज्य में खरीदे जाने वाले धान का लगभग आधा चावल अपने उपयोग के लिए खरीदती रही है, लेकिन अब इस चेतावनी के कारण राज्य में धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम कहते हैं,
सरकार बंदिश कर रही है कि अगर MSP से ज्यादा रेट किसानों को बोनस के तौर पर देंगे तो केंद्रीय पूल का लगभग 32 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं खरीदेंगे। ये अड़ंगा लगातार लगा रही है, अगर हमारे साथ अन्याय करेगी तो हम भी सोचने पर मजबूर होंगे।
मोहन मरकाम ने आर्थिक नाकेबंदी की भी बात कही। इसके बाद राज्य के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने साफ चेतावनी दे दी।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जो कहा है उस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि कोरबा से सर्वाधिक कोयला प्रोडक्शन होता है और हम कोयला का डिस्पैच रोक देंगे अगर ये उसको चावल को नहीं लेंगे तो।
कोयला को लेकर राज्य सरकार की चेतावनी पर अगर अमल हुआ तो कई राज्यों में बिजली बंद होने का खतरा हो सकता है। हालांकि अयोध्या को लेकर आए फैसले के कारण दिल्ली में 13 नवम्बर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ सरकार के प्रदर्शन को टाल दिया गया है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब की बार आर पार की लड़ाई की मुद्रा में नजर आ रहे हैं।
हम तो शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हक की बात है। हमारी सरकार उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से पिछली सरकार ने बोनस देने की बात कही थी लेकिन दिया नहीं, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी।
यह दिलचस्प है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने को लेकर छत्तीसगढ़ को चेतावनी दे रही है, वहीं राज्य में भाजपा चाहती है कि किसानों से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही धान की खरीदी हो। भाजपा इसके लिए आंदोलन भी कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह कहते हैं,
11 महीने में इनकी हालत ये खराब हो गई है, अभी तो 5 साल चलाना है, धान खरीदी के पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को भ्रम की स्थिति में ले जाने का प्रयास हो रहा है। तो एक प्रकार से यह है कि अपनी कमजोरी, अपने दिवालियापन को छुपाने के लिए प्रकार से लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है।
राज्य में धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रहा विवाद अगर नहीं सुलझा तो राज्य के 20 लाख से अधिक किसान परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब अखबारों की समीक्षा, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं संदीप जी, बताएं।
जी आदर्श, आज के लगभग सभी अखबारों में महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल को अपने पहले पन्ने पर लिया है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि भाजपा का सरकार बनाने से इनकार के बाद राज्यपाल ने शिवसेना को न्योता दिया है। अब सबकी नजरें शिवसेना के साथ ही शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। आगे इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि अयोध्या फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए या नहीं, इस बात का फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 17 नवंबर की अपनी बैठक में तय करेगा। बताया जा रहा है कि बोर्ड के कई सदस्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।
जी, मेरे पास जनसत्ता है जिसमें एक खबर है कि शेफाली है 15 साल की, शेफाली वर्मा वर्मा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाली वो भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने T20 मैच में 49 गेंदों में 73 रन बनाए। वो हरियाणा की रहने वाली हैं।
जी जी, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार अब सभी बैंकों को रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी के दायरे में लाने का विचार कर रही है और साथ ही दिवालिया होने की हालत में ग्राहकों की जमा राशि पर 1 लाख रुपए के बीमा को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप के जरिए जासूसी मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। 2-3 साल पहले इसराइल की कंपनी पेक्सस ने व्हाट्सएप के जरिए जासूसी करने वाले स्पाईवेयर बेचने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मीटिंग की थी। द स्टेट्समैन की खबर के अनुसार तूफान बुलबुल के कारण पश्चिम बंगाल में 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये मौतों की संख्या अलग अलग अखबारों में अलग अलग है
जी,
कहीं पे 9 है कहीं पे 10 है, लेकिन स्टेट्समैन के अनुसार 7 लोगों की मौत हुई है। तूफान के कारण राज्य में करीब 4.5 लाख आबादी प्रभावित हुई है। भारी नुकसान पहुंचाने के बाद ये तूफान बांग्लादेश की ओर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रभावित इलाके का दौरा करने वाली हैं
जी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि देश में प्याज की भारी किल्लत के बावजूद भारत माली को प्याज का निर्यात करना जारी रखेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार, लातिन अमेरिकी देश बोलीविया की बात करते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने विरोध प्रदर्शनों के कारण 14 साल सत्ता में रहने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। क्यों नाराज थे लोग, आज क्या घटनाक्रम हुआ, सुनिए हमारे सहयोगी संदीप राय से।
ये आवाज़ें बोलिविया के प्रमुख शहर लापास की गलियों में नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों की हैं जो राष्ट्रपति इवा मोरालेस को पद छोड़ने के लिए कह रहे थे। प्रदर्शनों का सिलसिला पिछले महीने से शुरू हुआ था जब चुनाव में इवो मोरालेस ने जीत हासिल की थी, मगर पर्यवेक्षकों का कहना है कि चुनावों के दौरान काफ़ी अनियमितताएँ बरती गई थीं। इसके बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरकार देश की सेना राष्ट्रपति के पद छोड़ने के लिए कहा। जनरल विलियम्स कालिमान ने कहा कि देश की शांति के लिए मोरालेस का जाना जरूरी है, लेकिन इवा मोरालेस का कहना है कि वह तख्तापलट के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह पद इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि अपने राजनीतिक सहयोगियों के परिवारों की रक्षा कर सकें, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके घरों को जला दिया था। मोरालेस ने टीवी पर प्रसारित संदेश में कहा, बोलीविया के मेरे भाई बहनों और दुनिया वालों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी उपराष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री के साथ हूं। मैंने अपने सोशल मूवमेंट फेडरेशन बोलीवियन वर्कर सेंटर के दोस्तों और चर्च से बातचीत की है और उनकी बात मानते हुए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। ये थे बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस के शब्द। मोरालेस के पद छोड़ने के बाद विपक्ष सक्रिय हो गया है। लापास में विपक्षी नेता लुई फर्नांडो का ने कहा कि वो नए प्रशासन के माध्यम से देश को एकजुट करना चाहेंगे। हम पूरी आबादी में उत्कृष्ट लोगों को साथ लेकर एक सरकारी बोर्ड बनाना चाहेंगे जो कि नई सरकार के गठन तक होने वाले बदलाव में सहायता करेगा। ये थे बोलिविया के विपक्षी नेता लुई फर्नांडो के शब्द। 14 सालों तक सत्ता में रहे इवो मोरालेस के पद छोड़ने के बाद विपक्षी दलों के समर्थक खुशी जता रहे हैं। मुख्य शहर लापास की गलियों में इन लोगों को बोलीविया के झंडे फहराकर जश्न मनाते देखा जा सकता है।
लातिन अमरीकी देश बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस के इस्तीफा देने को लेकर जानकारी दे रहे थे संदीप राय। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने कल नागपुर में खेले गए तीसरे और आखिरी 2020 मुकाबले में बांग्लादेश को 30 रन से मात दी। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो मोहम्मद नईम के 48 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्कों के सहारे बनाए गए बेहद शानदार 81 रनों के बावजूद 19.2 ओवर में 144 रन पर ही सिमट गई। भारत के दीपक चहर ने 3.2 ओवर में केवल 7 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। उन्होंने हैट्रिक भी ली। उनके अलावा शिवम दुबे ने 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रेयस अय्यर के 33 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से बनाए गए 62 और केएल राहुल के 52 रनों के सहारे निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 174 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत बांग्लादेश सीरीज से आखिरकार भारत को क्या हासिल हुआ, इसे लेकर पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा कहते हैं,
दीपक चहर की गेंदबाजी, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी, 4 नंबर की जो परेशानी थी है भारत की, जो मुश्किल आती थी, वो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सुलझती चली जा रही है। और दीपक चहर ने जिस तरह की गेंदबाजी की और जिस तरह वेस्टइंडीज में भी गेंदबाजी की है, ऐसा लगता है कम से कम 2020 क्रिकेट का बेहतरीन गेंदबाज आपको मिल गया। और जहां तक बाकी खिलाड़ियों की बात है, मेरे को न जाने क्यों लगता है कि अभी भी रविंद्र जडेजा टीम में क्यों नहीं, कुलदीप यादव टीम में क्यों नहीं, और फिर अगर शमी और बुमराह नहीं है तो उमेश यादव टीम में क्यों नहीं।
और अब समीक्षा। आखिरी वक्त पर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पुरुष और महिला हॉकी टीम से पदक की कितनी उम्मीद करें?
ये मैच में जब सेकंड हाफ में हमें एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, पेनल्टी कॉर्नर से प्रतिपाल सिंह ने हमारे वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशली थे, तो वो हिट जो उनके कैप्टन थे गोल में खड़े थे उनके पाव में जाके लगी और इसे पेनल्टी स्ट्रोक मिला। और महेंद्र लाल जी जो पेनल्टी स्ट्रोक स्कोर थे उन्होंने बहुत खूबी इसको गोल में तब्दील किया, ये एकमात्र गोल हुआ फाइनल में और अंत तक पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, तो इस तरह वो मैच हमने 1-0 से जीता।
ये कहना है साल 1964 के जापान के टोक्यो शहर में हुए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सेंटर फॉरवर्ड रहे हरविंदर सिंह का। तब फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। 8 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने पिछले दिनों रूस को टोक्यो में ही अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के क्वालिफायर 2 चरण के मुकाबलों में 4-2 और 7-1 से हराया। दोनों मैच जीतकर भारत ओलंपिक का टिकट पाने में भी कामयाब रहा। रूस के खिलाफ दोनों क्वालिफायर मैच खेलने वाले और पहले मैच में 2 गोल करने वाले भारत के मनदीप सिंह ने टीम की तैयारियों को लेकर कहा,
ओलंपिक क्वालिफाई में कोई भी टीम को हम हल्की नहीं ले सकते, क्योंकि रशिया भी टीम अभी अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके आई थी, हम भी अपने आप को प्रिपेयर किए थे और हमारा यही था कि हमें चांस मिले थे और हमने थोड़े कन्वर्ट किए और थोड़े हमने मिस भी किए।
ओलंपिक क्वालिफायर में किसी टीम को हल्का नहीं लिया जा सकता। तब भारतीय टीम का ये हाल है कि उसने ऐन आखिरी वक्त में टोक्यो में जगह बनाई। पिछले रियो ओलंपिक में भारतीय टीम 8वें स्थान पर रही थी, ऐसे में उससे क्या उम्मीद करें? पूर्व ओलंपियन और हॉकी इंडिया के चयनकर्ता हरविंदर सिंह ही कहते हैं,
फील्ड गोल मिलते हैं तो पेनल्टी कॉर्नर में कहीं ना कहीं मिस करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर से गोल करते हैं तो फील्ड गोल मिस करते हैं, ये हमारे लिए भारी पड़ सकती है। मेडल की बात है तो हम लोग जरूर इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि हमारी टीम इस दफा जरूर मेडल जीते।
इससे पहले पिछले साल भारतीय पुरुष हॉकी टीम इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में बमुश्किल 3रा पायदान हासिल करते हुए कांस्य पदक जीती थी, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 4थे पायदान पर रही। रही बात भारतीय महिला हॉकी टीम की, तो वो पिछले ओलंपिक खेलों में 12वें यानी आखिरी पायदान पर रही। वो गोल अंतर के आधार पर क्वालिफायर मुकाबले में अमरीकी टीम को 6-5 से हराकर टोक्यो का टिकट हासिल कर गई है। भारतीय महिला टीम भी पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 4थे पायदान पर रही थी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने जरूर रजत पदक जीता, लेकिन अब जब निशाने पर टोक्यो ओलंपिक का पदक है तो पुरुष और महिला दोनों टीमों को ना को चने चबाने होंगे। उधर चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब कल शीर्ष वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोता ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने दूसरी वरीयता हासिल चीन ताइपे के चोउ तियन चेन को 21-15, 17-21, 21-18 से हराया, जबकि महिला एकल वर्ग का फाइनल तीसरी वरीयता हासिल चीन के युफेई ने जीता। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का रविवार निधन, रविवार को रात 9:30 चेन्नई के अपने आवास पर निधन हो गया। सरकार बनाने से पीछे हटने के बाद, बीजेपी के पीछे हटने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिवसेना को न्योता भेजा है।
बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने आम चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने अपने ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार,
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।